21। हस्तिनापुर में मेरे दिन बड़े आनंद से व्यतीत होने लगे। पहले कुछ दिन तक तो चंपा नगरी की बहुत याद आई थी, धीरे धीरे वह भी बिना किसी कारण के कम होती गई। परंतु मेरे पास जो पेटका थी उसके कारण मुझको माता का प्रेमपूर्ण मुख सदैव अपनी आंखों के सामने दिखाई देता था। वह इस समय दूर थी, इसलिए उसकी वास्तविक महत्ता का ज्ञान मुझको अब हुआ था। मैं प्रतिदिन सोते समय कहता था, माता, ममता के धागे से बंधे हुए जीव भले ही कितनी दूर हों लेकिन वे निकट ही रहते हैं। तो इस पेटका में है ही नहीं, तो दो पेटिकाओं में है, एक तो अपनी दी हुई पेटका में और दूसरे मेरी मन की पेटका में। स्मृतियाँ झंझावात की तरह होती हैं, वे चाहे जहाँ से और चाहे जैसे आ सकती हैं। कितनी ही नहीं बल्कि कभी कभी तो वह मन के शांत सरोवर में उफान भर देती हैं। कभी कभी चंपा नगरी की बड़ी तीव्रता से याद आती, मन उदास हो जाता और फिर किसी में न रमता। ऐसे अवसर पर मैं शोण को लेकर नगर में चक्कर लगा आता, उससे सारी उदासीनता दूर हो जाती। अनेक बार इस चक्कर लगाने के कारण अब हम सारा नगर हमको परिचित सा लगने लगा था। कौन से मार्ग कहाँ जाते हैं, किस देवता का मंदिर कहाँ है, सरोवर कहाँ है, अश्वशाला कहाँ है, धनागार कहाँ है, शस्त्रागार कहाँ है, यह सब हमको अच्छी तरह ज्ञात हो गया था। हस्तिनापुर ऐसा लगता था जैसे भिन्न भिन्न आकार के और रंगों के पुष्पों से भरा हुआ कोई उद्यान हो। कितने प्रकार के मनुष्य इस नगर में रहते, गायक, नर्तक, योद्धा, व्यापारी, कृषक, कलाकार, पंडित और इनके अतिरिक्त चर्मकार, कुंभकार, सम्मार्जक आदि श्रमजीवी भी यहाँ थे। चाहे जिस समय जाओ नगर में सदैव भीड़ भाड़ दिखाई देती थी। इस नगर को देखते समय मेरा मन कभी नहीं उबा। कभी कभी तो यह इच्छा होती थी कि युद्धशाला में जाना छोड़कर मैं नगर में घूमने जाऊँ, लेकिन यह संभव नहीं था क्योंकि मैं यहाँ घूमने नहीं आया था, शिक्षा प्राप्त करने आया था। 22। हस्तिनापुर में मेरा कार्यक्रम निश्चित सा था। मैं प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठा करता था, नियम पूर्वक गंगा के किनारे पर जाता था, कोई व्याघात न डाले इसलिए घाट पर कभी नहीं जाता था। मैं अपने लिए एक अन्य अच्छा सा और शांत स्थान चुन लिया था, यहाँ किसी के आने की संभावना नहीं थी। वहाँ जाकर मैं जी भर कर डुबकियाँ लगाता था, तदुपरांत कमर तक पानी में खड़ा हो जाता था। छोटी छोटी मछलियाँ आकर मेरे पैरों को नोचने का प्रयत्न करती थी, परंतु मैं जानता था कि इससे उनके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ेगा। मेरी अभेद्य त्वचा को काटते काटते वे थक जाती और फिर हार कर चली जाती। बाद में तो उन्होंने मेरे आसपास ही आना छोड़ दिया। शायद उन्होंने यह समझ लिया था कि मेरे पैर तो पानी में पड़े रहने वाले दो परिचित पत्थर जैसे हैं। मैं अंजलि में पानी भरकर सूर्यदेव की प्रतीक्षा करता। दूर गंगा के जल के ऊपर धीरे से सिर उठाते उनकी किरणों से ऐसा लगता मानो गंगा के असंख्य लघु लहरें सिर पर सुनहरे रंग का वस्त्र रखकर नाच रही हों। कभी कभी कोई कारांडव पक्षी हम दोनों के मध्य चक्कर लगाने लगता। उस पक्षी के सूर्य के सामने पड़ने से उस तेज का उतना स्थान छिप जाता था। मैंने मन ही मन कहता था, इस छोटे से पक्षी में भी कुछ शक्ति है, अपने अस्तित्व से वह सूर्यबिंब को भी ढकना चाहता है। वह पक्षी अब दूर चला जाता तो बिंब पुनः चमकने लगता। हाथ के जल का अर्घ मैं उस तेज को देता और कहता, आपका शिष्य या सूत पुत्र कर्ण आपको आपके आशीर्वाद का अभिलाषी है, मुझ पर अनुग्रह करो गुरुदेव। उसके बाद मैं एकटक उस तेज की ओर देखता, चमचमाते हुए असंख्य तेजस्वी कण मुझको दिखाई देते, प्रचंड वेग से घूमने वाले तेज के कण, विश्व का अंधकार दूर करने वाले तेज के कण, संसार में उत्साह के सहस्त्र धाराएं बहाने वाले अमर तेज के कण। यदि एक ही दिन ये कण जग को अपना मुख न दिखलाएं तो क्या हो जाएगा। यह हस्तिनापुर, यहाँ के ये राजप्रसाद और मंदिर, गर्व से छाती आगे निकाल कर चलने वाले ये योद्धागण, वह अर्जुन, वह भीम, वह द्रोण, क्या होगा इन सबका। आह, कितने कर्तव्य दक्ष हैं ये तेज के कण। मैं मन ही मन कहता, यह कण भी उस तेज के कणों में से एक कण बन जाता तो कितना अच्छा होता। तब वह भी स्वयं को जलाकर संसार के समस्त अंधकार को दूर कर देता, परंतु यह संभव न था। मैं स्वयं को भूल जाता, देह का कवच, कानों के कुंडल, किसी का भी मुझको ध्यान नहीं रहता। आँखों को अपलक खोलकर मैं उस तेज को यथाशक्ति आँखों से पी लेता, लेकिन पी कर भी मैं कभी तृप्त नहीं हो सका। इसी तरह अनेक घंटे बीत गए, वह तेज मेरे सिर पर होता हुआ पीछे चला गया हो जाता। अब मुझको देखना संभव नहीं होता, मेरी गर्दन थक जाती और तब मैं शांतिपूर्वक आंखें बंद कर लेता। आंखों के आगे तेज के वलय गिरने लगते। मुझको ऐसा लगता जैसे मेरे शरीर के रक्त की एक बूंद उस तेज के कण की तरह फिर रही हो। बड़ी देर के बाद मैं आंखें खोलता, मेरी पीठ अधिक संतप्त हो जाती थी, किनारे बालू भी तप्त हो जाती थी। मैं जल्दी जल्दी पानी से बाहर निकलता और वस्त्र बदलकर लंबे लंबे डग भरता हुआ राजभवन की ओर चल देता। 23। राजभवन पर आते युद्धशाला में पहने जाने वाले वस्त्रों को पहनता और शोण को लेकर मैं युद्धशाला की ओर जाता। वहाँ हमारा सारा दिन भिन्न भिन्न प्रकार के शस्त्रों का अभ्यास करने में व्यतीत होता। कभी चक्कर लगाते हुए गदा फिराते, कभी खड्ग के हाथ दिखाते, कभी शूल फेंकते। जो भी शस्त्र हाथ में आता उसको कौशलपूर्वक जब तक चला नहीं लेता था तब तक मुझको संतोष न होता था। विशेष रूप से धनुष के अभ्यास के लिए तो मैंने घंटों तक तपस्या की थी। क्योंकि कोई भी विद्या हो वो पौधों की तरह होती है, उसमें निष्ठा का खाद और मन की एकाग्रता का पानी जब पड़ता है तभी वो बढ़ती है, इनके अभाव में उसके मरने की संभावना रहती है। पूरे दिन मैं इस निष्ठा की और मन की एकाग्रता की पराकाष्ठा पर कर देता, जो कठिन होता था उसे भी पहले सीखने की भी इच्छा मेरी होती थी, मैं उसको सीख लेता। संध्या समय सभी लोग गुरुवर द्रोण की आज्ञा होते ही हाथ में लगे शस्त्र नीचे रखकर अपने अपने निवास स्थान की ओर चले जाते। मैं श्रोण को वहीं रुकने के लिए कहकर झटपट गंगा के किनारे चला जाता। युद्धशाला के पीछे से बातें हुई वह आगे नगर में गई थी। वहां खड़ा होकर मैं पश्चिम की ओर देखता। हस्तिनापुर से विदाई लेने वाले सूर्यदेव को मैं वंदन करता। मेरे देह पर अपनी सुलहनी अंगुलियां फिराते हुए वे मानो कहते अब हम कल मिलेंगे। दिन भर भिन्न भिन्न प्रकार के शस्त्रों का अभ्यास करने से जो शांति आ जाती थी वह क्षण भर में दूर हो जाती। रात को बिस्तर पर लेटते ही दिन भर के परिश्रम के कारण मुझको तत्क्षण नींद आ जाती, लेकिन कभी कभी वह बालक की तरह रुष्ट भी हो जाती। तब गुरुवर द्रोण के वे शब्द याद आते, यह राजकुमारों के साथ कैसे शिक्षा पा सकता है। मैं अपने मन को समझाने का प्रयत्न करता, उनके कथन में कोई त्रुटि नहीं है, हम युवराज नहीं हैं, हम उनके साथ नहीं पढ़ सकते हैं। पर मन यह बात मानने को तैयार नहीं था, मैं व्याकुल होकर करवटें बदलता रहता। अपनी इस व्याकुलता पर मुझको स्वयं ही आश्चर्य होता था। नगर में ऐसे असंख्य युवक थे जो युवराजों के साथ शिक्षा नहीं पा सकते थे, वे सबके सब युद्धशाला में आते, वे भी क्या मेरी तरह विचार किया करते हैं, फिर मुझको भी यह बात इतनी क्यों खर रही है। परेशान होकर मैं बाहर आ जाता, राजभवन के सामने एक सरोवर था, उस सरोवर के किनारे पर आकर बैठ जाता। उसके स्वच्छ पानी में आकाश का प्रतिबिंब झलकता था, चंद्रमा के कोर तो आकाश की निर्जीव तारिकाओं को साथ खेलना छोड़कर उस सरोवर की चपल मछलियों के साथ खेलने के लिए आकाश का इतना ऊंचा सोपान सचमुच उतर कर आ बैठती थी। सरोवर के निर्भीक मछलियां उस कोर के साथ सतत मनोहर आंख मचौली खेलती रहती। बड़ी देर तक मैं मछलियों की इस मनोहर चपल दौड़ धूप को देखता रहता। सरोवर के चारों ओर तटबंदी की दीवार में कहीं कहीं कबूतर रहते थे, उनमें से कोई कबूतर भोले भटके आवाज कर उड़ता और फिर शांत हो जाता। चंद्रकोर की ओर देखता हुआ मैं सीढ़ियां चढ़कर फिर से कक्ष में लौट आता तथा शांतिपूर्वक सो जाता। 24 राजप्रसाद से युद्धशाला बहुत दूर थी, इसलिए हम कुछ दिन युद्धशाला में ही रहने लगे। अब राजप्रसाद से हमारा संबंध टूट गया था। वर्ष में एक बार शरद उत्सव के लिए हम राजभवन जाया करते, वह भी युवराज दुर्योधन के आग्रह के कारण। उसने और माता विश्वरमा ने हमारी अत्यधिक सहायता की थी, उसके 99 भाई थे, लेकिन अकेले दुर्योधन को छोड़कर और किसी से भी मेरा हालचाल किसी ने नहीं पूछा। मुझको औरों के प्रति कोई आकर्षण नहीं था। अब सबके नाम कितने विचित्र थे, दुर्मर्श, दुर्मुख, अत्यनार। यूं तो मुझको एक और व्यक्ति भी अच्छा लगा था, वह था अश्वत्थामा, गुरु द्रोण का पुत्र। इतना सरल और रिज स्वभाव का था उसका। इतनी छोटी सी अवस्था में धर्म, आत्मा, पराक्रम, कर्तव्य, प्रेम आदि विषयों पर वह कितने अधिकार से बोलता था। अपना समस्त अतिरिक्त समय मैं उसके साथ चर्चा करने में बिताता था। उसको मेरा केवल कर्ण नाम ही विदित था। मैं कौन हूँ, कहाँ का हूँ, यहाँ किस लिए आया हूँ, इस संबंध में उसने मुझसे कभी पूछताछ नहीं की थी, इसलिए वह मुझको सबसे अधिक अच्छा लगा था। एक दिन मैंने सहज ही उससे पूछा, तुम्हारा नाम अश्वत्थामा तनिक विचित्र सा है, तुमको नहीं लगता? छोटे बालक की तरह खिलखिलाकर हंसता हुआ बोला, तुम ठीक कह रहे हो, यह नाम मुझको भी खटकता है, लेकिन मैं अपने नाम के संबंध में लोगों से पूछता हूँ तब वे क्या कहते हैं जानते हो? और क्या कहेंगे, तुम घोड़े की तरह रोबीले दिखाई पड़ते हो, ऐसा ही कुछ कहते होंगे? नहीं, ये लोग कहते हैं कि जन्म लेते ही मैं घोड़े की तरह ही नहीं आया था और इसलिए मेरा नाम अश्वत्थामा रखा गया था, लेकिन मुझे नहीं जचती यह बात। कोई छोटा पशु घोड़े की तरह हिनहिनाए, यह भी कभी संभव है क्या? परंतु सच बात तो यह है कि मुझको अपना नाम अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे पिताजी मुझको अशु कहते हैं, लेकिन जब मैं अकेला होता हूँ तभी कहते हैं, सबके सामने तो वे मुझको अश्वत्थामा ही कहते हैं। मुझको भी वह अशु नाम बहुत अच्छा लगा। उसकी संगति में मेरे दिन बड़े मजे से बीत रहे थे। वह मेरे कानों के कंडलों को छू कर कहता, कर्ण, तुम्हारे ये कंडल दिन ब दिन और अधिक सुनहले रंग के होते जा रहे हैं। नगर के किस सुवर्णकार के पास जाकर इस पर अपना सुनहला वृक्ष चढ़वाते हो? मेरे इन कुंडलों को रंगने वाला सुवर्णकार कौन है यह मुझे भी कहाँ मालूम है, नहीं तो मैं उसे अवश्य कहता कि मेरे मित्र अश्वत्थामा को भी सुनहले कुंडलों की एक जोड़ी दे दो, बड़ा अच्छा है यह। वह हंसकर कहता, नहीं भाई, अपने कुंडलों को तुम अपने ही पास रखो। कानों में सुनहले कुंडल देकर कोई चोर मुझ जैसे पर्णकुटी में सोने वाले ऋषि कुमार के कान ही काटे जाएगा, फिर तो न कुंडल रहेगा न कान। हम दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ते और अपने आप को भूल जाते। मैं सदैव मन में सोचा करता कि गुरु द्रोण का वह पुत्र कितना निष्पाप और निराग है, उसमें और शोर में क्या अंतर है, परंतु उसके पिता कितने गंभीर शांत हैं, उनके मन की था ही नहीं मिलती। या कि उत्तरदायित्व मनुष्य को प्रौढ़ बना देता है यहाँ के कुछ लोग जन्म से ही प्रौढ़ होते हैं। वह दुष्ट नहीं है क्या? सदैव गंभीर, क्या मजाल जो कभी भूल कर भी हंसे। परंतु इस शाला के सभी शिष्य उसका कितना सम्मान करते हैं, और उसका भाई अर्जुन तो जैसे सबका प्राणी प्राण ही है। जहाँ देखो वही अर्जुन। इस अश्वत्थामा पर भी उतना प्रेम नहीं होगा जितना गुरु द्रोण उस अर्जुन पर करते हैं। अर्जुन को वो इतना क्यों मानते हैं? वैसे देखा जाए तो अश्वत्थामा के बराबर श्रेष्ठ युवक युद्धशाला में कोई और नहीं था, लेकिन उस अर्जुन के अतिरिक्त यहाँ और किसी का सम्मान नहीं था। किसी व्यक्ति का इतना महत्व बढ़ा देना कहाँ तक उचित है? इससे उस व्यक्ति क्या उन्मत्त नहीं हो जाएगा? वह कौन सी कसौटी है जिस पर खरा उतरने के कारण अर्जुन को गुरुदेव ने अपने इतने समीप कर लिया है? अनेक बार मेरे मन में इच्छा हुई थी कि अश्वत्थामा से यह प्रश्न पूछूं, लेकिन बड़े संयम से मैंने वह बात टाल दी थी। कभी इसमें वह अपने पिता का अपमान न समझ गई, इसीलिए वह प्रश्न मैं उससे कभी नहीं पूछ सकता था। परंतु एक मित्र के रूप में अश्वत्थामा मुझ पर युद्धशाला के अन्य सभी शिष्यों की अपेक्षा अपने अधिक समीप लगता था, अधिक अच्छा लगता था। 25 बीच में एक बार मैं माता से मिलने के लिए चंपा नगरी गया था। 8 दिन बाद जब लौटा तो अश्वत्थामा ने मुझसे अब से मुझको यह पता चला कि गुरु द्रोण ने अपने सभी शिष्यों की परीक्षा ली थी। उन्होंने एक अशोक वृक्ष की ऊंची डाल पर एक मरा हुआ पक्षी उसमें भूस भरा हुआ था टंगवा दिया था। उस पक्षी के बाई आँखों को अशोक भेजने वालों को उनका प्रशंसात्मक साधुवाद मिलना था। उन्होंने सभी शिष्यों को एकत्र किया और एक एक करके प्रत्येक को उस पत्थर के चबूतरे पर बुलाकर उसके हाथ में धनुष देकर उससे निशाना लगाने को कहा। प्रत्येक व्यक्ति आता, धनुष उठाता, प्रत्यंचा चढ़ाता। इतने में गुरुवर उसे पूछते, बाण छोड़ने से पहले तुझको क्या दिखाई दे रहा है? अनेक जनों ने अनेक प्रकार के उत्तर दिए। उस मूर्ख भीम ने तो यह कहा कि मुझे परली की ओर से वे हरे पेड़ दिखाई पड़ रहे हैं। कोई कहता कि बादल दिखाई पड़ रहा है, कोई कहता कि पेड़ के हरे पत्ते दिखाई दे रहे हैं, कोई कहता कि वह पक्षी दिखाई दे रहा है। इससे गुरुदेव को संतोष नहीं हुआ। वे उस व्यक्ति को धनुष नीचे रखकर वापस जाने को कहते। सबके अंत में अर्जुन आया। गुरुदेव ने उसे पूछा, अर्जुन तुझे क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन बोला, मुझे केवल इस पक्षी की आँख ही दिखाई दे रही है। गुरुवर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसके पीठ पर थाप मारी और कहा, बहुत अच्छे, तो कर आँख का भेदन। उसने तत्क्षण बाहर छोड़कर उस आँख को भेद दिया। गुरुवर ने फिर उसकी पीठ पर थाप मारी। यह समस्त घटना मुझको अश्वत्थामा में बड़ी बड़ी आँखों को बीच बीच में और बड़ी करते हुए बताई। अंत में उसने मुझसे स्वसहाय पूछा, कर्ण यदि तू उस समय उपस्थित होता तो तू पिताजी को क्या उत्तर देता? मैं थोड़ी देर चुप रहा। मन ही मन मैंने स्वयं को उस पत्थर के चबूतरे पर समझकर विरासन लगाया और आंखों के सामने उस पक्षी की आंख पर दृष्टि स्थिर कर दी तथा उसे कहा, अश्वत्थामा यदि मैं होता तो मैंने कहा होता मुझको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि लक्ष्य सामने होने पर कर्ण फिर कर्ण ही नहीं है, उसका संपूर्ण शरीर बाण बन जाता है। केवल बाण ही नहीं बल्कि बाण की नोक और लक्ष्य भेद का बिंदु। मैंने कहा होता मेरे नुकीले शरीर की एक तिल भी जितनी जगह सामने दिखाई दे रही है। मेरे इस उत्तर से आनंदित होकर अश्वत्थामा ने मुझको अंक में भर लिया। वह बोला, कर्ण तो सब में श्रेष्ठ धनुर्धर होगा। उसके बंधन से अपने को छुड़ाता हुआ मैं मन ही मन निश्चय कर रहा था कि जिस युवराज अर्जुन की उस पक्षी की आंख का भेद करने के कारण गुरुवर ने इतनी प्रशंसा की थी वह लक्ष्य भेद आज मैं करूंगा। यह करने पर गुरुद्रोण भी कभी न कभी मुझको भी अपने निकट कर लेंगे, मेरी भी पीठ थपथपाएंगे। उस दिन संध्या के समय मैं नगर में गया। मरे हुए पक्षियों में मूस भरकर बेचने वाले एक व्यक्ति से मूस भरा हुआ एक पक्षी लिया और लौट आया। रात को चारों ओर स्तब्धता होते ही मैंने शोण को जगाया। हम दोनों अपने कक्ष से बाहर निकले। मेरे हाथ में पक्षी था, संपूर्ण युद्धशाला शांत थी। दिन में शस्त्रों के झनकार से कंपित रहने वाला वह स्थान इस समय निस्तब्ध था। स्थान स्थान पर इंगुदी के पलीते जलते हुए उस भव्य क्रीड़ांगन को धर्म बधा रहे थे। उनमें से एक पलीता मैंने हाथ में ले लिया और बीच के धनुर्वेद के पत्थर के चबूतरे पर चढ़ गया। सामने ही विशाल अशोक वृक्ष था, उसकी ओर उंगली से संकोचित कर अपने हाथ में लगी पक्षी शोण के हाथ में देता हुआ मैं बोला, इस पक्षी को उस वृक्ष पर किसी ऊंचे स्थान पर बांध दो और तुम पलीता लेकर वहीं रुके रहो। किस लिए? उसने आश्चर्य से पूछा। वह बाद में बताऊंगा, जल्दी जाओ। मेरे हाथ में से पलीता और पक्षी लेकर वह वृक्ष की ओर गया। सर सर गिलहरी की तरह सरकता हुआ वह क्षण भर में ऊपर चढ़ गया। थोड़ी देर बाद वह बोला, भैया यहाँ एक शाखा से एक धागा बंधा हुआ दिखाई देता है, यहीं बांध दो क्या? जितना संभव हो सके उतना ऊंचा जाओ अभी, मैंने नीचे से चिल्लाया। वह वहां से और ऊंचा गया। उससे अधिक ऊंचाई पर वह अब नहीं जा सकता था। उसने अपने हाथ में पकड़ा पक्षी एक डाल में बांध दिया। वह एक अन्य शाखा पर बैठ गया। मैंने चिल्लाकर उसे कहा, उस पलीते को इस तरह पकड़ो कि पक्षी मुझको दिखाई दे, तनिक भी हिले डुले मत। उसने पलीता अच्छी तरह पकड़ लिया, मैंने धनुष उठाया और विरासन लगाया। उस चबूतरे पर खड़े होकर ही मैंने सूर्यदेव का शिष्यत्व स्वीकार किया था। मेरा मन मुझसे कह रहा था, याद रख जो राजा अर्जुन ने लक्ष्य ही दिखाई देने वाली आँख फोड़ी थी, तुझको दोनों आँखें फोड़नी। दिखाई देने वाली और न दिखाई देने वाली। कैसे? पहला बाण लगते ही वह पक्षी घूमेगा, उसका दूसरी ओर का हिस्सा सामने आ जाएगा, इतने में दूसरा बाण उसकी दूसरी आंख में घुसना चाहिए। ये दोनों बाण एक ही समय छोड़ने हैं और वह भी पलीते के इस 2 मील प्रकाश में। मैंने वृक्ष की ओर देखा, पलीते के फड़फड़ाते ज्योति से हवा का अनुमान किया। समीप लगे तरकस में से 2 सूची बाण झट से खींच कर हाथ में लिए, धनुष को संतुलित किया और दोनों बाण उस पर चढ़ा दिए। रतन तक खींची, अब मैं नहीं रहा था। मेरा शरीर, मन, दृष्टि, श्वास, बाणों की दोनों नोक और पक्षी की दोनों आंखें एक हो गए। खींची हुई प्रत्यंचा पर दोनों उंगलियां स्थिर हो गई। दोनों उंगलियों पर 2 भिन्न भिन्न प्रभाव थे। उनमें से एक बाण थोड़ा सा आगे जाना चाहिए था और दूसरा तुरंत उसके पीछे। क्षण भर स्थिरता रही और फिर दोनों बाण सू करते हुए एक दूसरे के बाद धनुष से छूटे। पहला आघात लगा और वह पक्षी एकदम घूमा, इतने में दूसरा बाण का एक और आघात उसको लगा तथा गड़बड़ी में शोर जरा जैसे तैसे बाधा गया। वह पक्षी धागा टूट जाने के कारण धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। हाथ में लगा धनुष फेंक कर चबूतरे की 4-4 सीढ़ियां एकदम उतर कर मैं दौड़ता हुआ उस वृक्ष के नीचे गया। पक्षी हाथ में लेकर एक और लगे पलीते के पास ले जाकर मैंने देखा, उसकी दोनों आंखों के पुतलियों में 2 बाण घुसे हुए थे। सफलता के आनंद से मेरी आंखें चमकने लगी। शोण वृक्ष से उतर कर नीचे आया। दूर कहीं रात में पारा देने वाले पहरादार ने मध्य रात्रि की घटकाओं के ढोले लव पट्टिका पर मारकर हम लौट कर कच्छ में सोने चले गए। उस दिन से लक्ष्य भेद के कठिन कठिन प्रकारों को हम दोनों गुप्त रूप से रात में करने लगे। अब अखाड़े में कोई नहीं होता था क्योंकि नीरव निस्तब्ध रात में मन को बड़ी अच्छी तरह एकाग्र किया जा सकता था, कोई भी आघात नहीं डाल सकता था। इसी प्रकार अभ्यास करते हुए एक के बाद एक अनेक वर्ष बीतते गए। इसका मुझको पता चला न शोण को। मल्ल विद्या के हाथ सीखने के कारण मेरा शरीर सुदृढ़ हो गया। मुझे दंड के स्नायुओं पर जोर से मुष्टि प्रहार करता हुआ अश्वत्थामा मुझसे कहता, कर्ण या मांस है या लोहा।